अतु ने कांपते हाथों से टेबल पर रखी डायरी उठाई। वो उस डायरी को पहचानती थी। ये उसकी मम्मा की डायरी थी, जिसे उनके जाने के बाद से उसके पापा हमेशा अपने साथ रखते थे। उनकी तन्हाई का साथी थी। आज भी उनके आखिरी वक्त पर ये डायरी, उसमें बसी यादें और आहाना की मौजूदगी का एहसास उसके साथ था। उस डायरी के उस पन्ने पर कुछ शब्द बिखरे थे, कुछ अल्फाज जो अक्षय के दिल के जज्बातों को जाहिर कर रहे थे। इश्क वो नहीं जो अल्फाजों में कहा जाए, इश्क तो वो है जो निगाहों से बयां हो जाए। इश्क वो नहीं जो पहली नज़र में हो जाए, इश्क जिससे हो वो हर रूप में नज़रों को भा जाए। इश्क वो नहीं जो धड़कनों को बहकाए, इश्क तो वो है जो दिल में धड़कन बनकर समा जाए। इश्क वो नहीं जो हसीन रात का साथ दे, इश्क तो वो है जो सुकून भरा दिन और मोहब्बत भरी शाम दे। इश्क वो नहीं जो खुशियों की सौगात साथ लाए, इश्क तो वो है जो खुशी हो या गम बस आपका साथ निभाए। इश्क वो नहीं जो सांसों की रवानी बढ़ाए, इश्क तो वो है जो एहसासों की कहानी सुनाए। इश्क वो नहीं जो दुनिया के सामने मोहब्बत लुटाए, इश्क वो है जो उसी दुनिया के आगे आपको इज्जत से सर उठाकर चलना सिखाए। इश्क वो नहीं जो आपको अपनी ही नज़रों में गिराए, इश्क वो है जो आपको पहले से बेहतर इंसान बनाए। इश्क वो नहीं जो किस्मत तुम्हें मिलाए, इश्क तो वो है जिसे पाने के लिए सच्चे दिल से इबादत की जाए। इश्क वो नहीं जो शरीर के अंत के साथ ही खत्म हो जाए, इश्क तो वो है जो रूह का रूह से मिलन कराए। इस दुनिया से अलग एक दूसरी दुनिया थी, जहाँ ना पाप है ना पुण्य, जहाँ ना कोई अमीर है ना गरीब, जहाँ रंग रूप धन दौलत के अनुसार इंसानों में तुलना नहीं की जाती, जहाँ मिट्टी से बना इस नश्वर देह को जाने की इजाज़त नहीं, वहाँ सिर्फ आत्मा जाती थी, जहाँ रूह से रूह का मिलन होता है, जहाँ इंसानी दुनिया के नियम कानून नहीं चलते। चारों ओर सफ़ेद धुआं बिखरा था और उसी धुएं में दो आत्माएं सूरज की किरणों से चमक रही थीं। धीरे धीरे वो तेज प्रकाश मध्यम होता गया और दो नश्वर रूह उभर कर सामने आईं। एक तरफ आहाना खड़ी थी तो दूसरी तरफ अक्षय। अनु, आपको इंतज़ार था मेरा। आहाना को सालों बाद अपने सामने देखकर अक्षय भावुक हो गया था। उसका सवाल सुनकर अनु हौले से मुस्कुरा दी। आपने तो बहुत लंबा इंतज़ार करवाया हमसे। क्या करूं, आप कुछ जिम्मेदारियां मेरे लिए अधूरी छोड़ आई थीं, उन्हें ही पूरा करने में इतना वक्त लग गया मुझे। पर अब हमारे दोनों बच्चे अपनी अपनी जिंदगियों में सेटल हो गए हैं, दोनों ही बहुत समझदार हैं, एक दूसरे को संभालने लायक हो गए हैं। अक्षय का जवाब सुनकर और अपने बच्चों के बारे में सुनकर आहाना की मुस्कान गहरी हुई। हम जानते हैं आपने हमारे दोनों बच्चों को हमारे बिना बहुत अच्छे से संभाला। देखा हमने ये सफ़र कितना मुश्किल था आपके लिए, पर आपने उन्हें आत्मनिर्भर बनाया, उन्हें अच्छी परवरिश दी, उनके लिए सही जीवन साथी ढूंढकर उनका विवाह करवाया, हमारे हिस्से की जिम्मेदारियां निभाई और अपने सभी कर्तव्यों से निर्वृत होकर अब हमारे पास आ गए हैं। अक्षय धीमे कदमों से आहाना की ओर बढ़ने लगा। आपके बिना ये सफ़र मुश्किल बहुत रहा, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, आपको बहुत याद भी किया, पर अब मैं आपको कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। अक्षय का जवाब सुनकर आहाना मुस्कुरा उठी। अक्षय के कदम ठीक आहाना के सामने आकर रुके और वो एकटक उसे देखने लगा। आप आज भी बिल्कुल पहले जैसी दिखती हैं, वही मासूम सा चेहरा, वही झुकी पलकें, वही गुलाब की पंखुड़ियों से खिले लब। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी एक बार फिर मुझे उस मोड़ पर ले आई है जहां से हमने इस सफर की शुरुआत की थी। आप भी तो नहीं बदले, देखकर लगता ही नहीं कि इतने सालों बाद देख रहे हैं आपको। लगता है जैसे कल ही की बात थी जब आप हमें देखने आए थे और पहली ही मुलाकात में आपने हमारे मन के तारों को झंकृत कर दिया था। दोनों सौम्य सी मुस्कान लबों पर सजाए अपलग एक दूसरे को यूं निहार रहे थे जैसे सदियों के इंतजार के बाद आज जाकर उनकी दीदार को प्यासी निगाहों को ये हसीन पल नसीब हुआ था। कुछ पल यूं ही आहाना को निहारने के बाद अक्षय ने उसकी ओर अपनी हथेली बढ़ा दी, पर इससे पहले कि वो उसे स्पर्श कर पाता, किसी ने उसकी बांह को पकड़कर पीछे को खींचते हुए उसे तेज आवाज में पुकारा। अक्षय जी, अक्षय जी, ये क्या कर रहे हैं आप? अक्षय जी उठिए। किसी ने उसे बुरी तरह झिंझोड़ दिया। अगले ही पल अक्षय की आंखें खुल गईं, नज़र सीधे सीलिंग पर पड़ी। ये उसके रूम की सीलिंग थी, मतलब वो अपने कमरे में था। अभी वो हकीकत और ख्वाब में अंतर भी नहीं पहचान सका था कि आहाना की चिंता भरी आवाज़ उसके कानों से टकराई। अक्षय जी, आप ठीक हैं? अक्षय ने चौंकते हुए आवाज़ की दिशा में नज़रें घुमाईं। निगाहें उसके पास खड़ी आहाना पर पड़ी जो उसकी ओर हल्का झुकी हुई थी। आँखें बड़ा बड़ा किए वो हैरान परेशान सी उसे ही देख रही थी। अक्षय हड़बड़ाते हुए उठकर बैठ गया। बेचैन निगाहें पूरे कमरे में घूमी और आहाना के चेहरे पर आकर ठहर गईं। कुछ पल वो ब्लैंक सा उसे देखता ही रह गया। हकीकत और ख्वाब में वो इस कदर उलझा कि उसे अपने आंखों देखे पर यकीन न हुआ। दिमाग अब भी उसी ख्वाब में कहीं भटक रहा था। अक्षय जी, क्या हुआ आपको? नींद में किससे बात कर रहे थे आप? और अब इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हैं? हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे हमें नहीं किसी भूत भेद को देख लिया है आपने? अक्षय के इस अजीब तरह से व्यवहार ने आहाना को उलझन में डाल दिया था। उसका कहा नींद शब्द कुछ पल तक अक्षय के कानों में गूंजता रहा। धीरे धीरे उसे अपने ख्वाब और हकीकत में अंतर समझ आने लगा और बिना एक पल गमाए उसने झटके से आहाना को अपने गले से लगा लिया और बाहों में कुछ इस प्रकार से जकड़ा जैसे जरा ही पकड़ ढीली होती ही वो उसे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए उससे दूर चली जाएगी। उसके यूं अचानक गले से लगाने से आहाना पहले तो चौंक गई, फिर उसका ध्यान अक्षय की बेचैनी से जोरों से धड़कती धड़कनों और बिखरती सांसों पर गया। उसकी खुद पर कसती पकड़ कुछ न कहकर भी बहुत कुछ कह गई थी। आहाना ने भी बिना कुछ कहे उसे अपनी बाहों में भर लिया और प्यार से उसकी पीठ को सहलाने लगी। अक्षय जी, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं?